मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 27 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ज्योति यादव इंदौर मध्य प्रदेश से, और गुलाब सिंह चंद्रा आपका गांव है उच्च भिट्टी छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, इस बीच प्रारंभिक परीक्षा जो 4 अक्टूबर को हुई थी उसके रिजल्ट आ चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका परिणाम क्या रहा है। दो में से एक ही परिणाम रहा होगा, या तो आप सफल हो गए होंगे या आप सफल नहीं हुए होंगे। देखिए, आप सफल हो गए हैं तो मेरी ओर से बहुत बहुत, मेरी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से बहुत बहुत और बहुत इसके लिए बधाई स्वीकार करें, और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी आप सफल हों इसके लिए शुभकामनाएं स्वीकार करें। लेकिन यदि सफल नहीं हुए हैं तो उनके लिए क्या? उनके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बात स्वीकार करें कि आप अपने जीवन के बारे में जब सोचेंगे तो आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि पहली ही बार में आप सफल हो गए हों। आपने बैठना सीखा है, आपने चलना सीखा है, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आप कितनी बार गिरे हैं। इसी प्रकार से आप इस परीक्षा की असफलता को भी गिरने वाली एक घटना मान करके चलें, एक ऐसी घटना जो आगे आपको चलने के लिए प्रेरित करेगी और चलना सिखाएगी। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने इस एग्जामिनेशन के परिणाम के अनुभव को अपने लिए एक सीख की तरह लें, लेसन की तरह लें। दोस्तों, निराश होने का कोई कारण नहीं होता। जो लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसमें उतने ही बार अधिक गिरना पड़ता है। हमें जीवन के, प्रकृति के इस सत्य को खुले मन से, पूरी निर्ममता के साथ स्वीकार करके अपने ऊपर लागू करना ही चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना मुझे देनी है कि बोधगम्यता पर, जो जिसे आप कंप्रहेंशन कहते हैं, उस पर मेरा एक लेक्चर YouTube पर डाला गया है। कंप्रहेंशन, चूंकि अब आप बकायदे प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं या जो असफल हो गए थे, अब आपकी परीक्षा के बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो बोधगम्यता को लेकर के, खासकर सी सेट में स्टूडेंट ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके एक लेक्चर वहां प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर AFEIS में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं प्याज की कीमतें, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। मंगलवार है, कोविड पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण धीरे धीरे हमारे देश का बढ़ता चला जा रहा है। स्वस्थ होने का प्रतिशत काफी बढ़ चुका है, 90% से हम ऊपर निकल गए हैं। मृत्यु दर भी घट करके 1.5% हो गई है, यानी कि इलाज हम मुहैया करा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात, सरकार ने घोषणा की है कि वैक्सीन बनने वाली है। लगातार आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि ट्रायल चल रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, तो कुछ लोग ये मान करके चल रहे हैं कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगी। और सरकार ने घोषणा की है कि जो वैक्सीन है ये अपने देश के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, तो हम पा रहे हैं कि स्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं। लेकिन जो यूरोप में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वो हमें सतर्क भी कर रहा है कि हमें इसको लेकर के बिल्कुल लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए, जैसा कि खासकर यूरोप के राष्ट्र हो गए थे। जो आवश्यक सतर्कताएं हैं उन्हें हमें बनाए रखनी होगी। दोस्तों, इस बीच में आपने एक खबर पढ़ी होगी, और वो खबर यह थी कि हमारी जो संसदीय समिति है उसने बकायदे जो फेसबुक के जो भारत में जो प्रमुख हैं उनको बुलाया और उनसे 2 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किया। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। यहाँ जो थोड़ी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये जो खासकर फेसबुक, गूगल, अमेजन, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो कार्य करने की प्रणाली है उसको लेकर के लगातार विवाद हो रहे हैं, प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कभी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के उठाए जा रहे हैं, कभी एकाधिकारवाद को लेकर के उठाया जा रहा है। तो जो इससे जुड़ी, इस विषय से जुड़ा हुआ जो हमारा संसदीय समिति है जुड़ी हुई, उसने बकायदे बुलाया था और दो घंटे तक पूछताछ की, लेकिन जो अमेजन के जो यहां प्रतिनिधि हैं वो नहीं आए। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। मैं यहां जानबूझ करके फेसबुक के जो प्रमुख थे उनसे जो सवाल पूछे गए हैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको कार्यप्रणाली का पता लग सके, और ये जो सवाल है इसी सवाल में आपको समस्या दिखाई देंगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। तो ये मैं बात कहने के ढंग को थोड़ा सा बदल करके आपके सामने रख रहा हूं कि समितियां जो होती हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछती हैं। आप भी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना, तो आप भी लोगों से इसी तरह से प्रश्न करेंगे। थोड़े से आप प्रश्नों को बस देख लें। ये फेसबुक से पूछा जा रहा है, समिति के हमारे सदस्य पूछ रहे हैं, जिसमें 20 सदस्य हमारे लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। भारत से कितना पैसा कमाते हैं, फेसबुक पर विज्ञापन के लिए टारगेटिंग कैसे करते हैं, इसमें कम्युनिटी पर फोकस होता है या पूरे देश पर या धार्मिक समुदाय पर या किसी जाति विशेष पर, भारतीयों का अपार डेटा जुटाकर आप उसे दुनिया भर में बेच क्यों रहे हैं, अगर आप डेटा बेचते हैं तो उसके लिए आप हमसे अनुमति क्यों नहीं लेते हैं, या क्या किसी से अनुमति लेते हैं क्या, यानी कि जिनके डेटा बेच रहे हैं क्या आप उनसे परमिशन लेते हैं, फिर डेटा बेचने से जो आपको आमदनी होती है क्या आप उसे फेसबुक के जो यूजर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं, यानी कि जिनका डेटा बेच रहे हैं क्या आप उसका कुछ हिस्सा अपने लाभ का उनको देते हैं, भारत में जो आपको आय होती है क्या आप उस पर टैक्स देते हैं, आपके पास जो विज्ञापन आते हैं वो अमेरिका के थ्रू क्यों आते हैं, डायरेक्ट भारत से क्यों नहीं आते, और अब आपने चूंकि जियो के साथ टाई अप कर लिया है तो उसके जो करोड़ों आपके यूजर्स बढ़ जाएंगे तो उनको आप रेगुलेट कैसे करेंगे। इस तरीके से कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, है ना। चूंकि प्रश्न बड़े मजेदार हैं और आपने देखा होगा कि इन प्रश्नों से ही जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनकी कहीं ना कहीं हमें झलक मिल रही है। दोस्तों, आज के अखबारों में और न्यूज में आपने कुछ बातें पढ़ी होंगी, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया एनर्जी फोरम है उसको संबोधित करके दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपडेट करने के लिए आपको, मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूं। पहला देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोहराया कि भारत में जो एनर्जी की संभावना है पेट्रोलियम सेक्टर की वो बहुत ज्यादा है, और इस फोरम में जो लोग आए थे वो विश्व के जो पेट्रोलियम क्षेत्र के जो दिग्गज हैं उन सब वहां उपस्थित थे, और उन्हीं को संबोधित करके प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे थे। तो उन्होंने पहले तो उनको भरोसा दिलाया कि भारत में जो पेट्रोलियम की जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ने वाली है वो उन्होंने स्पष्ट किया। खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, और ऊर्जा नवीनीकरण के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं उन्होंने याद दिलाया, और वो जो दो तीन बातें हैं वही आपके लिए यहाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि बकायदे हमने 2022 तक नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में 1.75 लाख मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन लग रहा है कि हम इस लक्ष्य को शायद हासिल नहीं कर पाएंगे, और 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है वो है 4.5 लाख मेगावाट बिजली, इसको गीगावाट भी कहते हैं, आपको कहीं कहीं गीगावाट पढ़ने को मिलेगा। जब हम इस इधर उत्पादन ज्यादा करने लगे ना नवीनीकरण ऊर्जा का, तो सीधी सी बात है कि जिनसे कार्बन निकलता है उनका उत्पादन कम हो जाएगा, तो इस तरह से जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि हम वन नेशन वन गैस ग्रिड पर भी काम कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे देश में गैस पर आधारित केवल एक ही ग्रिड होगा, और भारत खासकर अपनी अर्थव्यवस्था को जो ऊर्जा की जो जरूरत है उसको गैस पर आधारित करने के बारे में बहुत तेजी के साथ विचार कर रहा है। एक छोटी सी जानकारी और, आपको मालूम है कि जो महिलाएं हैं जब मां बनती हैं प्रसव के समय तो बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें मैटरनिटी लीव दी जाती है, और इसके लिए बकायदे एक्ट आया हुआ है। सरकार में काम करने वाली महिलाओं को तो मिलता ही मिलता है, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब भारत सरकार ने इसे पुरुषों के लिए भी लागू किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चों की देखभाल को कितना महत्व सरकार दे रही है इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसे पुरुष जो बिल्कुल सिंगल हैं, यानी कि माँ जिनकी नहीं है, या जो पुरुष तलाकशुदा हैं लेकिन बच्चों की देखभाल करनी होती है, विधुर हैं जिनकी मां नहीं रही, मतलब बच्चों की मां नहीं रही, तो ऐसे पिताओं के लिए भी सरकार ने चाइल्ड केयर लीव देने की घोषणा की है। बस थोड़ी सी जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग होगा, इसके बारे में मैं जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज अखबारों में काफी कुछ छपा भी है, ये डायलॉग हो जाए, उस पर साइन हो जाए, बेहतर होगा कि हम इस पर कल बात करें तो वो ज्यादा मुकम्मल बात हो सकेगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है प्याज की कीमतें। अगर आप बाजार जाते हो या आपके कानों में यह सूचना पहुंची हो कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, 50 रुपए से लेकर के 70 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है, ये कीमतें क्यों बढ़ी हैं हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं जानते, लेकिन सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अभी एक नियम बनाया है, और वो नियम ये है कि जो प्याज का जो स्टॉक है उसको लिमिटेड कर दिया है। जो थोक व्यापारी हैं वो केवल अधिकतम 25 टन प्याज अपने पास रख सकेंगे, और जो खुदरा व्यापारी हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो अपने पास केवल 2 टन प्याज का ही स्टोर कर सकेंगे, भंडारण कर सकेंगे। इससे होगा क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप भंडारण कम कर सकेंगे तो फिर प्याज कहां जाएगा? स्वाभाविक तौर पर वो प्याज मार्केट में आ जाएगा। जब वो प्याज मार्केट में आ जाएगा तो प्याज की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, और जब प्याज की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि प्याज की कीमतें गिर जाएंगी। ये सामान्य तौर पर आर्थिक जगत का एक सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, और ये काम भी करता है। तो सरकार प्याज की आपूर्ति को बढ़ाना चाह रही है। आपको ध्यान होगा कि जब अभी कृषि व्यवस्था पर जो एक्ट लेकर के सरकार आई है, उसमें एक एक्ट था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको सरकार ने बदला है, और उसमें कुछ चीजें थी जिन्हें सरकार आवश्यक वस्तु मान करके अधिनियमित करती थी, उन वस्तुओं को फ्री कर दिया। यानी कि जैसे आप प्याज है, आलू है, खाद्य तेल वगैरह हैं, खाद्यान्न पदार्थ हैं, आप जितना भी स्टॉक करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रोविजन भी था कि अगर सरकार चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, और उसी एक्ट का अभी इस्तेमाल करते हुए कि सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, और उसमें बकायदे ये दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 1 साल में दुगुनी हो जाती है तो सरकार उसके स्टॉक पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्याज के साथ अब ऐसा हो गया है। ये एक सामान्य सी बात है जो मैंने आपको बताई है। इसे मैंने मुख्य विषय के तहत क्यों लिया है? दोस्तों, इसलिए लिया है कि अब आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी इसी तरीके से करनी चाहिए। अब नहीं, ये तो पहले से ही चल रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार जो इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के क्वेश्चन है, और जब स्टूडेंट से बात होती तो वो कहते हैं कि सर पता नहीं ये तो कहां से पूछ लिया गया, इसके उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने प्याज की आपको बात बताई और थोड़ा सा विश्लेषण किया है, बहुत थोड़ा सा। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। मेरे पास डी सेट है क्वेश्चन पेपर का, और उसका 13 क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए कि उसमें क्या पूछा गया है। हाल के बीते दिनों में, है ना, करंट है, हाल के बीते दिनों में, कहा जाता है कि इस बार करंट अफेयर से क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो भैया ये किसका क्वेश्चन है? कह रहे हाल के बीते दिनों में, निम्नलिखित में से कौन से कारक ऑब्लिक कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। खत्म हो गई बात, चावल के मूल्य को कौन सी नीतियां प्रभावित कर रही थी। अब सिंपल से दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकियां, उपभोक्ता सहायकियां को आप इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर सब्सिडीज, आप कंज्यूमर को सब्सिडी देते हैं, ये 4 दिए हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो मैंने प्याज के भंडारण की बात कही है उससे इसका संबंध है? मैं अभी इसके बारे में कोई विश्लेषण नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सब मेरे इस आदत की वजह से थोड़े से परेशान भी होंगे कि सर बता तो देते हैं लेकिन विश्लेषण नहीं करते। मैं आपको मौका देता हूं कि आप विश्लेषण करें। मेरे विश्लेषण करने से क्या होगा? जहां जरूरत होती है मैं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर के दौड़ लगाएं, और ऐसा तभी हो सकेगा जब मैं आपको अवसर उपलब्ध कराऊंगा। हो सकता है कि मेरी यह नीति आपको थोड़ी सी निर्मम सी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। अनूप राज जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, राकेश कुमार हरियाणा से, विपिन दुबे, सूर्य प्रकाश पटना से, कृष्णानंद कुशवाहा, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, सौरभ प्रताप, अभय कुमार मिश्रा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, सर्वेश्वर सिंह रावत और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।